प्रोफेसर रईफ अलवी साहब, आप पहले भी ऑस्ट्रेलिया तशरीफ लाते रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान में भी तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं। क्या इस वक्त अगर हम पाकिस्तान में तालीमी मेयार के हवाले से बात करें तो तारुफी तौर पे आप पाकिस्तान में इस वक्त तालीमी मेयार को कहाँ देखते हैं?
पाकिस्तान में तालीमी मेयार जो है वो कई मरहलों पर है। पहला मरहला जो प्राइमरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल या इंटरमीडिएट तक है, उसमें तो आपको तालीमी मेयार बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि पता नहीं क्यों इस तरफ इतनी तवज्जो नहीं की गई। लेकिन आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत बेहतर मेयार मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें इख्तियार की हैं, जो सिस्टम बनाए हैं, वो तमाम के तमाम मगरबी सिस्टम से मुतालिक हैं, उन्हीं की तकरीबन तकलीद की गई है। तो इस तरह हमारे यहाँ वो सिस्टम जो है वो काफ़ी मजबूत है, मगर बुनियादी तौर पे ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी बुनियादी तालीम को मजबूत बनाएँ, बेहतर बनाएँ, खूबसूरत बनाएँ, ज़्यादा इल्म से वाबस्ता करें उसे और ज़्यादा मामलात से वाबस्ता करें जो सूरत हाल सोसाइटी में माशरे में होती है। लेकिन वो हिस्सा अभी तक हमारा बहुत कमज़ोर है और उसकी वजह से हमारे ऊपर आने वाले तालबिल जो हैं, जो आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, वो भी बुनियादी तौर पे नापुख्ता होते हैं, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरबियत या तालीम हो जाती है तो वो फिर जाके दुनिया में मुकाबले में शरीक हो सकते हैं।
प्रोफेसर मोहम्मद रईस अलवी साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि आपने जापान में काफ़ी वक्त भी गुजारा और इस हवाले से आपने एक किताब भी लिखी, ज़रा उस किताब का जिक्र करेंगे।
जी हाँ, ये जापान में काफ़ी अर्सा गुजारा मैंने और ये किताब जो ताज़ा तरीन मेरी किताब है, इसका नाम है अंदरून शिमाल का तंग रास्ता। ये जापानी ज़बान की एक किताब है, इसका नाम है ओकुनो होसो मिची, इसका तर्जमा यही है, अंदरून शिमाल का तंग रास्ता। ये किताब जो है इसमें हाइकू के जो सबसे बड़े शायर गुजरे हैं या सबसे अव्वल शायर गुजरे हैं, उनका नाम था मत्सुओ बशो। तो ये मत्सुओ बशो का एक सफ़रनामा है जो उन्होंने तकरीबन 2500 किलोमीटर सफ़र किया उन्होंने, और ये किया उन्होंने 1689 में। जी हाँ, 17वीं सदी का सफ़रनामा है। और इसमें जहाँ जहाँ वो गए, जो जिस श्राइन्स में, मंदिरों में, रास्ते में, पहाड़ पे, दरिया पे उबूर करते हुए जिस तरह वो निकले और फिर पहुँचे, और मुकामात पे, मुख्तलिफ मुकामात पे उन्होंने हाइकू लिखी, और वो हाइकू जिस तरह लिखी उन्होंने वो हमें ये बताती हैं कि हाइकू कैसे लिखी जाती है, कहाँ लिखी जाती है, कब लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है, उसका क्या मंज़र होता है, उसका क्या पस मंज़र होता है। तो हाइकू के लिखने वालों के लिए, हाइकू शोरा के लिए ये किताब एक बाइबल की हैसियत रखती है, और ये एक ऐसा मुस्तनद टेक्स्ट है जापानी ज़बान में, जापानी लिटरेचर में, जो नाकाबिले फरामोश है। और मैं ये खुशी है ये बात, इस बात को बताते हुए कि उर्दू में ये पहला तर्जमा है जो किसी एशियाई ज़बान में हुआ है, यानी इसका तर्जमा अब तक हिंदी में या किसी हिंदुस्तान की या किसी पाकिस्तान की ज़बान में नहीं हुआ, ये पहला तर्जमा है जो उर्दू में हुआ है। और तकरीबन ये बराह रास्त मैंने इससे किया है, इसमें जो लोगों ने हमें राय दी है वो तमाम के तमाम जापानीज़ हैं।
और मेरे ख्याल में ये अहम बात है कि जापानी ज़बान का इतना मुस्तनद हवाला अब उर्दू ज़बान में भी इतने मुस्तनद नाम के साथ मंजर आम पे आया है, और यकीनन लोगों की तहकीक करने वालों के लिए कारामद रहेगा। बहुत शुक्रिया इस मालूमात का प्रोफेसर साहब। पाकिस्तान में जो तालीमी निज़ाम की हम बात कर रहे थे, बहुत खबरें आती हैं कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे घोस्ट स्कूल हैं जो सिर्फ कागज़ों के ऊपर हैं और उनकी तनख्वाहें और मराद भी अदा होती हैं। क्या इस तरफ भी कुछ खुद तालीमी इदारों से वाबस्ता अफराद की भी इसकी तरफ तवज्जो है, या ये हुकूमत का मामला ही समझ के छोड़ दिया गया इसे?
होस्ट स्कूल जो मैंने आपसे कहा ना कि बुनियादी तालीम की तरफ तवज्जो बहुत कम है, और बुनियादी तालीम बुनियादी तौर पे सरकार की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, और होस्ट स्कूल जो हैं वो तमाम के तमाम तर जो कभी 5,000 की फिगर में आते हैं, कभी 7,000 की फिगर में आते हैं, कि ये सिर्फ सिंध में इतने होस्ट स्कूल हैं।
जी, ये हालिया रिपोर्ट।
जी हाँ, तो लेकिन ये कि वो जिम्मेदारी बुनियादी तौर पे सिर्फ गवर्नमेंट की है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, तो सरकारी नीम यानी कोई प्राइवेट स्कूल ऐसे घोस्ट स्कूल हो ही नहीं सकते। ज़ाहिर है प्राइवेट वाले जिस तरह से स्कूल बनाते हैं और जिस तरह उसकी देखभाल करते हैं, ये लोग ऐसा करते हैं कि गवर्नमेंट वाले जो हैं वो ऐसा करते हैं कि स्कूल बन गया, न कोई वहाँ है, न कोई टीचर है, न कोई टीचर होता है और न कोई वहाँ पर सामान होता है और न स्कूल के बच्चे होते हैं। لیکن پھر اس کو بنا کے اس کو تمام تر وہ ایک کاغذ پہ ہوتا ہے, اس کا بجٹ بھی چلا جاتا ہے. یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی طرف توجہ اولین توجہ دینی چاہیے اور ہم سب کو اسکول نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہماری بنیادی تعلیم بہتر سے بہتر ہو سکے.
بہت شکریہ پروفیسر رئیس صاحب.